तो ये भागवतम का तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय है, जिसमें माता देवहूति अपने जो पुत्र हैं उनसे प्रश्न पूछ रही हैं, है ना। तो इसको हम टेक्निकली इसको सांख्य योग बोलते हैं, जहाँ पर कपिल मुनि विस्तार से भौतिक जगत, जीव किस तरह भौतिक जगत में फंसता है, माता के घर में प्रार्थना करता है, फिर जो ग्रह मेदियों का जीवन है वो कैसा होता है, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से यहाँ बताया गया है। अभी जो माता देवहूतियाँ प्रश्न कर रही हैं वो जानना चाह रही हैं कि भक्ति के मार्ग क्या है, है ना। देवहूतिर उवाचा, बता रहे हैं, यथा सांख्येषु कथितम यन मूलम तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसा प्रभो, है ना। कि आपने सांख्य के बारे में तो बहुत विस्तार से बता दिया है, अभी जो भक्ति योग का रास्ता है, भक्ति मार्ग का रास्ता है, उसको आप विस्तार से बताइए, है ना। ये देवहूति माता का प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं भक्ति योगो बहुविधो, कि जो भक्ति का मार्ग है वो क्या है, बहुत सारे हैं, है ना। मार्गय भामिनी भाव्यते, है ना, कि भक्ति योग जो है बहुत सारे रास्ते हैं। अभी हम सुनते आ रहे हैं कि अलग अलग रास्ते हैं, कर्म कांड है, कर्म योग है, फिर ज्ञान कांड है, फिर उपासना कांड है, और अंतिम में भक्ति योग है, है ना। जो लेडर है वो सीढ़ी है, उसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग है। लेकिन कपिल मुनि क्या बता रहे हैं कि भक्ति भी कई तरह की है, है ना। हम एक भक्ति नहीं कर पा रहे, इतनी सारी भक्ति कैसे करेंगे, है ना। तो अलग अलग भक्ति कैसे है, एक्चुअली भक्ति तो एक ही है, शुद्ध भक्ति में सेवा, लेकिन साधक की स्थिति के अनुसार भक्ति अलग अलग हो जाती है ना। जैसे हम साधारण भाषाएं बोलते हैं, मिश्रित भक्ति है, जैसे प्रधान भूति भक्ति है, है ना, गुणभूत भक्ति है, कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है, है ना। तो अलग अलग उसका परिभाषा हो सकता है, लेकिन जो वास्तव में भक्ति योग है वो एक ही है। वो क्या है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षसे अहेतु की अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसीदति, है ना। सवई पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम मतलब लोग, सभी लोगों का परम धर्म क्या है, यतो भक्ति अधोक्षसे, जो अधोक्षस है, अधोक्षक मतलब जो हमारी इंद्रियों और मन की इंद्रियों मन से परे हैं उनकी भक्ति करना, कैसे, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मतलब हमारी कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, है ना। और अप्रतिहता, अप्रतिहा मतलब बिना रुके, जब अहेतु की अप्रतिहता जब भगवान की भक्ति होती है तो क्या होता है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तब जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। फिर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम इति भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति की क्या परिभाषा है, कि अन्य अभिलाषाएं कुछ भी नहीं है, भक्ति ज्ञान और कर्म के द्वारा आवृत नहीं है, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे भक्ति कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, उसको बोलते हैं उत्तमा भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। तो भक्ति तो एक ही है, शुद्ध भक्ति में सेवा, है ना। और क्या परिभाषा है शुद्ध भक्ति की, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, और हमारी इंद्रिय क्या हो गई, शुद्ध हो गई, ऋषिकेना ऋषिकेश सेवन भक्तिर उच्चते, इन शुद्ध इंद्रियों से जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश उनकी सेवा करना उपाधि मुक्त होकर, वो है शुद्ध भक्ति। तो भक्ति तो एक ही है, लेकिन साधक की स्थिति के अनुसार भक्ति अलग अलग हो जाती है ना, और इसीलिए अलग अलग तरह से भक्तों का एडवांसमेंट होता है, है ना। सब जैसे हम स्कूल जाते हैं तो जो टीचर हैं वो तो एक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत ग्रास्प करता है, एक सुनते ही नहीं है और एक बीच में रहता है, तो किस अंतर किस में आए। टीचर तो सब एक सबको एक ही बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्तर क्यों आया। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पढ़ाई बहुत ध्यान दे रहा है, एक कम ध्यान दे रहा है, लेकिन उसमें कर्म के भी नियम है। किसी की बुद्धि ऐसी है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिटिक चीज नहीं समझ पाएगा ना, उसके लिए फिर वर्णाश्रम है। लेकिन जो भक्ति है वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, उसमें ऐसा नहीं होगा मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं तो मैं कैसे भक्ति को समझूंगा, या मैं भारत का नहीं हूं मैं भक्ति को कैसे समझूंगा, मैं इस जाति का भक्ति को कैसे समझूं। भक्ति को समझने का अपॉर्चुनिटी सबको है, है ना। तो सब प्रभुपाद की बुक्स भी सब वही है, हरे कृष्ण महामंत्र भी वही है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर वाले दूसरा मंत्र कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आके दूसरा मंत्र करेंगे, जब जॉब लग जाएगी तीसरा मंत्र आएगा, वो भी नहीं है। करेक्ट, मंत्र भी वही है, प्रसाद भी वही है, प्रोसेस भी वही है, बुक्स भी वही है, तो एडवांसमेंट अलग अलग क्यों है, प्रगति अलग अलग क्यों है, व्यवहार अलग अलग क्यों है, है ना। सब सब वही प्रोसेस में जा रहे हैं, है ना। तो वो समझना पड़ेगा कि साधक की स्थिति क्या है, साधक की मनोवृत्ति क्या है, है ना। तो टोटल प्रभुपाद यहां तात्पर्य बता रहे हैं कि 81 तरह की भक्ति होती है, 81 तरह की भक्ति। तो नवदा भक्ति क्या है, नवदा भक्ति, अरे क्या हो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। तो ये जो भक्ति के अंग है 9 अंग, जैसे श्रवण है तो श्रवण सतोगुण में भी हो सकता है, रजोगुण में भी हो सकता है और तमोगुण में भी हो सकता है। जो कीर्तन है वो सतोगुण में भी हो सकता है, रजोगुण में भी हो सकता है, तमोगुण में भी हो सकता है। अपने आप में श्रवण क्या है, शुद्ध सत्पर है, प्रकृति के 3 गुण से ऊपर है। अपने आप में जो कीर्तन है वो एकदम शुद्ध है, लेकिन साधक क्या है, तमोगुण में, साधक क्या है, रजोगुण में, तो उस कीर्तन का प्रभाव उसको ऐसे ही पड़ेगा। भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधक में समस्या है। तो अभी 3 गुण है और नवदा भक्ति है, तो कितना हुआ टोटल भक्ति, 9, 3, 12 27 और 27 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा कितना होगा, 81। तो इस तरह से नवदा भक्ति एक अंग तीन गुण, तो कितना हो जाएगा, 81, है ना। अभी कोई व्यक्ति भक्ति के अंग को पालन कर रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है या अर्चन कर रहा है या कोई सेवा कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन किस गुण में कर रहे हैं, इन 3 गुण में करेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे हम। ये 3 गुण से बाहर करना है, क्योंकि भक्ति क्या है, महात्मा नामस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति आश्रितम। जो भक्ति है या जो भगवान के भक्त हैं वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा बहिरंगा शक्ति में नहीं होती है, है ना। हम तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो जो भौतिक जगत के जो भी कार्य हैं वो किस में हो रहे हैं, बहिरंगा शक्ति में हो रहे हैं। और अगर हम बहिरंगा शक्ति मतलब प्रकृति के 3 गुणों में हो रहे हैं, और अगर हम भक्ति करेंगे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत, तो वास्तव में क्या है, वो हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा, और इस चीज को हम देख सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो शुद्ध सत पर आकर भक्ति करेगा उसका एडवांसमेंट होगा, है ना। तो अगर हम ब्रॉड डेफिनेशन देखें तो एक होती है तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति। तो भक्ति तमोगुणी नहीं है, साधक तमोगुण है। रजोगुणी भक्ति नहीं है, जो साधक है, जो भक्त है वो रजोगुण में है और वो भक्ति कर रहा है ना। तो भक्ति तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन साधक की स्थिति के अनुसार अलग अलग स्टेज हो सकती है। तो अगला श्लोक है, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मार्च से मेव वा समरंभी भिन्न दृक् भावम मय कुर्यात्स तामसः। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक, क्रोधी, पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है, है ना। तो कौन कौन से गुण है हमारे में, चेक करते हैं। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक, क्रोधी और पृथकतावादी, है ना। तो हम देखते हैं कि भक्ति में भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एरोगेंस, हार्शनेस, है ना, जैसे बता रहे हैं, ये देवी और आश्चर्य स्वभाव है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरम। तो असुर लोगों की संपदा क्या होती है वो बता रहे हैं भगवान। प्राइड, एरोगेंस, प्राइड मतलब यस दंभ, मैं महान हूं, मैं एरोगेंस, एरोगेंस मतलब रूडनेस, रफ बिहेवियर। कॉन्सीट, कॉन्सीट मतलब अंदर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। एंगर, क्रोध, हार्शनेस, एक जैसे वो हैं, सिनोनिम्स हैं। इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज बिलोंग टू द दोज ऑफ डेमोनिक नेचर और सन ऑफ प्रथा। तो ये जो आसुरी संपद है, इन आसुरी संपद को हम बनाए हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, तमोगुण भक्ति होगी, है ना। हार्शनेस, हमारे व्यवहार में अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है पूरी तरह से, और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं अपना दूसरों के ऊपर, है ना, चिड़चिड़ापन, ऐसी बोले अरे क्या कर रहा है तू, है ऐसे। जैसे बाहर एक दूसरे, जब कोई परेशान होता है तो बोलता है ना, अभी अभी क्या कर रहा है तू, है, तो ऐसे। तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं मतलब ये समझ गया है, समझ में आ गया है कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा करना है। लेकिन जो हमारे अंदर अनर्थ हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। सामने से तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, है ना, बहुत विनम्र हैं और एकदम मिठास से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही साथ वाले आते हैं तो फिर अपना रूप बाहर आ जाता है, है ना? जब कोई सीनियर है या मंदिर है, इतने विनम्र बन जाएंगे कि बस लेट जाएंगे बस प्रभु जी के सामने, इतने विनम्र बन जाएंगे। और जैसे ही साथ वालों के साथ में आएंगे तो सिर बन जाएंगे पूरे, ऐसा दहाड़ेंगे, ऐसा दहाड़ेंगे कि किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, है ना। जिनमें तमोगुणी भक्ति करते हैं वो किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाते हो। हम देखते हैं कि एक बार कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ जो देख रहे थे ब्रह्मानंद महाराज थे, ब्रह्मानंद स्वामी। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने गमछे सुखाए थे, तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी लेबर थे वो काम कर रहे थे, उनका गमछा चोरी हो गया। तो ब्रह्मानंद महाराज एकदम कौन 10 ऋषिराज अगर इकट्ठे हो जाएं, इतना उनका इतनी बड़ी पर्सनैलिटी था। तो वो गए वो लेबर के पास, पता चला कि गमछा चुरा लिया, तो वो गमछा ले लिया। तो लेबर जो था गुस्सा हो गया और सबका मीटिंग हुआ लेबर का, और बोला हम काम नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने देखा कि टेंपल का काम रुका हुआ है, क्या हुआ? तो पता चला कि ब्रह्मानंद महाराज ऐसा इंसिडेंट हुआ और वो जो लेबर है स्ट्राइक पे चले गए, हम काम नहीं करेंगे। तो आप देखिए वो इतना ज़्यादा वो है, दम्भ है, इतना ज़्यादा अभिमान है कि अगर किसी भक्त ने बोल दिया कुछ तो हम काम नहीं करेंगे, बस ख़त्म, मुझे नहीं करना, भगवान की सेवा रुक जाए। मेरा अहंकार जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान की सेवा जो है वो सेकेंडरी है। अगर मेरा अभिमान संतुष्ट हो रहा है तो अच्छा है, और मेरा अगर अभिमान संतुष्ट नहीं हो रहा है और सेवा नहीं हुई तो चलेगा, और कोई कर लेगा, उसमें क्या है। मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने बोला जाओ उसके उसको प्रणाम करके आओ, उसके पैर छू के आओ। तो ब्रह्मानंद महाराज प्रभुपाद ने बोला करना है, गए उसको प्रणाम किया, उसके पैर छूए, तो वो फिर काम करने आया, फिर सारे लेबर काम करने आए। कहने का मतलब क्या है, अभी एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो एक लेबर है उसमें भी इतना वो है अहंकार। अभी हम जाते हैं कि बैंक में जाएंगे या कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो गार्ड होते हैं या क्लर्क होते हैं, क्लर्क से मिलेंगे तो वो उनके भी, अरे कैसे कैसे आ गए, क्या है, है ना। तो भक्ति में आके भी क्या है, इस तरह से हार्श बिहेवियर, है ना, चिड़चिड़ापन, किसी को कभी भी डांट देना, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, पूरी परिस्थिति जाने बिना, है ना, और आपस में कड़वाहट, बिटरनेस, है ना, आपस में संबंधों में कड़वाहट बनी हुई है, उससे मैं बात ही नहीं करता हूँ, उसका चेहरा जैसे दिखता है मैं अपनी गली चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो ये क्या है, भक्तों के बीच में जो हम रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो ये हमको ट्रेनिंग है कि कैसे हमें भगवत धाम में रहना है। यहाँ अगर हम ट्रेनिंग, जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होगा और जब व्यक्ति ट्रेन हो जाएगा तब उसको भेजेंगे लड़ने के लिए, अब उसको ट्रेनिंग नहीं हुआ और लड़ने भेज दिया तो डर जाएगा, बंदूक ही नहीं उठा पाएगा, दुश्मन को देख के डर जाएगा। तो ये क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, और अच्छी तरह से हम ट्रेन हो गए कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, हम ट्रेन हो गए तो लेंगे अभी भगवत धाम जाएगा तो सही रहेगा, तब भगवत धाम को भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर यहाँ जो हमारा ट्रेनिंग हो रहा है उसमें हम अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हुए तो बोलेंगे वहाँ जाके भी क्या करेगा, यही करेगा, यहाँ पे जो कर रहा है कूड़ा कर रहा है वहाँ पे जाके कूड़ा ही करेगा, तो वहाँ पे नहीं भेजेंगे। तो भक्तों के साथ कैसे डीलिंग करना है, कैसे हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये बेस के कई पर्पज में एक यही पर्पज़ है, एक कैसे भक्तों के साथ आपस में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ग्रुप बन जाते हैं, भक्तों के ग्रुप बन जाते हैं, ये ग्रुप के, इस ग्रुप में 5-6 लोग हैं, इस ग्रुप में 5-6 लोग हैं, ये ग्रुप वाले इन ग्रुप से बात नहीं करते हैं, ये इनसे बात नहीं करते हैं, है ना, ऐसे ग्रुपिज्म हो जाता है ना। अभी मंदिर में जो माता जी लोग सेवा करने आते हैं उनके बहुत सारे ग्रुप हैं, ये उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या बता रहा है, हम यहाँ नहीं रह सकते भक्तों के साथ में, तो रहो यहीं पर, भगवत धाम का अवसर नहीं मिलेगा। फिर ये कॉन्सीट, कॉन्सीट मतलब इसको बोलते हैं फॉल्स ह्यूमिलिटी, है ना, फॉल्स ह्यूमिलिटी मतलब एक झूठा विनम्रता, हाँ झूठी विनम्रता, विनम्र तो है ना, कन्वेंशनली विनम्र है, बाहर से विनम्र है लेकिन अंदर से क्या है, और भोग ये सब अलग अलग हमको गुण हैं, तो हमें देखना चाहिए इन सब चीज़ों से क्या है, निकलना चाहिए। ऐसे हमारे बेस में भी ऐसा केस हुआ था, उनको बोले लेक्चर में आने नहीं है, नहीं आएंगे लेक्चर में, नहीं आएंगे कीर्तन में, और नहीं आना, कर लो जो करना। ऐसे ऐसी स्थिति आ जाती है जिनमें ऐसा गुण आ जाता है, वो सुनना ही बंद कर देते हैं, है ना, उनके कान खुले रहते हैं लेकिन कुछ अंदर जाते ही नहीं, सुनते ही नहीं कुछ, कितना भी समझा दे, डायरेक्ट बता दे, इनडायरेक्ट बता दे, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है ना। तो ये क्या है, अगर हम कृष्ण भक्ति समझे हैं और इस तरह से हमारे गुण विकसित हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये तमोगुण है ना। तो देखना चाहिए कि ये गुण तो हमारे अंदर नहीं आ रहे। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, इन दिस वर्स द रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब्ड। नरक जाने की एक बहुत ही सुंदर रास्ता इसमें बताया गया है। द डेमोनिक वॉन्ट टू मेक ए शो ऑफ रिलीजन एंड एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल साइंस ऑल दो दे डोंट फॉलो द प्रिंसिपल्स, है ना। तो वो शो कर रहे हैं रिलीजन का, एडवांसमेंट का, लेकिन वास्तव में उस चीज को वो फॉलो नहीं कर रहे। दे आर ऑलवेज एरोगेंट एंड प्राउड इन पॉसेसिंग सम टाइप ऑफ एजुकेशन एंड सो मच वेल्थ, है ना। तो हमने वो मायाजाल देखा था ना, मायाजाल, तो भक्तों के अंदर मायाजाल कैसा होता है वो आज का डिस्कशन है। उस मायाजाल वीडियो, उसमें क्या था ड्रामे में, कि एक जीव है कैसे अलग अलग तरह से प्रभावित होता है, लेकिन भक्ति में आने के बाद भक्त तीन गुणों से कैसे प्रभावित होता है वो हम चर्चा कर रहे हैं। ओवर ट्रिफल्स दे बिकम वेरी एंग्री एंड स्पीक हार्शली नॉट जेंटली। छोटी सी बात पर एकदम से गुस्सा हो जाना, अरे तुमने क्यों कर दिया ऐसे, है पता नहीं तुम्हें। दे डू एवरीथिंग विम्सिकली, मनमाने ढंग से वो लोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए ना। और ये ऐसा होता है लेकिन इन सब चीजों से निराश नहीं होना, इसका हम आगे सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। अगर कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि हमको उनके प्रति दुर्भावना विकसित करना है ना, वो बात नहीं हो रही है। लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रॉब्लम है तो उससे निकलना है ना। फिर रजोगुणी भक्ति, विषयान अभिसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादाव चर येद्यो माम पृथक भाव सा राजसा। मंदिर में एक पृथकतावादी वादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तो क्या क्या है इसमें, यश ऐश्वर्य और पृथक भाव, है ना। तो जो रजोगुणी भक्ति कर रहे हैं, रजोगुण में रह के कर रहे हैं, तो यस मैं सबसे महान हूं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, सबसे अंदर सेवा मैं कर रहा हूं। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य कहे प्रभुपाद जी के पास, बोले प्रभुपाद मैं सबसे अंदर गिरा हुआ हूं, सबसे अंदर विनम्र हूं। बोले आप सबसे अंदर कुछ भी नहीं हो, है ना, सबसे अंदर विनम्र ही भगवान। तो वही जो भावना है कि मैं भक्ति करूंगा और मेरा यश होगा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना, ये जो भावना है वो क्या है, रजोगुणी भक्ति। मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छी सेवा करता हूँ, मैं अच्छी मृदंग बजाता हूँ, मैं अच्छे प्रवचन देता हूँ, है ना, ये सब क्या है। अच्छा मतलब क्या, जो भगवान और गुरु को प्रसन्न करे वो अच्छा है, जो भगवान गुरु को प्रसन्न ना करे वो बेकार है ना। बांग्लादेश में जाएंगे तो जो गाने वाले हैं और मृदंग बजाने वाले हैं उनके सामने हमारे इस्कॉन के भक्त फेल हो जाएंगे। इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, लेकिन क्या आप संप्रदाय में हैं? आप संप्रदाय में रहकर अच्छा गा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका, है ना। कोई भी हम देख लें, कोई भी हम सेवा देख लें, जैसे मान लीजिए मंदिर निर्माण है, भगवान के मंदिर बना रहे हैं, तो यस मैंने भगवान का मंदिर बनाया है, मेरी मेहनत से मंदिर बना है, लेकिन भगवान के लिए तो 16,108 महल हैं, और एक महल ऐसा है, एक महल इतना बड़ा है कि भारत के अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर का वो जो होगा ना घर, उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा भगवान का द्वारिका में एक जो महल है। तो जो हम मंदिर बना रहे हैं उससे क्या कंपेयर है? कोई भी सेवा देख लें हम, अगर उस सेवा की वजह से मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, तो क्या क्या पता है? सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, षड गोस्वामी, आपको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है, ये सब सब जीवों में है ना, सब लोगों में ये भावना है, और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। सेक्स डिजायर से निकलना एक तरह से आसान है, लेकिन पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या होती है? मन के स्तर पे होती है, मानसिक, मेंटल या इंटेलेक्चुअल, उससे निकलना क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे महाराज बताते हैं, कई लेक्चर में महाराज ऐसे व्यंग्यात्मक बोलते हैं कि गली का कुत्ता है, है ना, 10 कुत्ते हैं, उन 10 कुत्तों में एक तंदुरुस्त कुत्ता है, और ऐसा ऐसा भोगता, ऐसा भोगता है कि 9 के 9 कुत्ते एकदम डर जाते हैं, है ना, और दूसरी गली से कुत्ता आता है उसको भोगता है, तो बाकी जो 9 कुत्ते हैं, वाह कितना अच्छा बॉस है, है? कितना, तो एक कुत्तों के बीच में हमारा एक नाम है, है ना। ऐसे मल का कीड़ा है, है ना, मैं सबसे ज़्यादा मल खाता हूँ, मैं भोपाल के सबसे अच्छे मल में हूँ, मैं भोपाल के जो सबसे नामी व्यक्ति है उसके मल में मैं रहता हूँ, है ना। तो ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की क्या है, है ना, तो वही जो भावना है जो पशुओं में है, जो कीड़े में है, जो कुत्ते में है, वही आके हमारे भौतिक जीवन में था, अभी भक्ति में आ गए तो वही लेके आ गए, हम वही भावना यहाँ लेके आ गए, तो क्या होगा? वही भावना है ना। तो मैं बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करता हूँ, है ना। तो ये अंततः जो है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर कृष्ण और गुरु प्रसन्न है तो वो सेवा की सार्थकता है, और कृष्ण और गुरु प्रसन्न नहीं है तो सेवा निरर्थक है, है ना। तो ये जड़े प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, ये जड़ प्रतिष्ठा है वो क्या है? सुअर की विष्ठा है, है ना। पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या है? ये सुअर की विष्ठा के समान। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना क्या है? जैसे गधे के मूत्र में स्नान करना है। गधे के मूत्र में स्नान करना ज्यादा अच्छा है बजाय पूजा लाभ प्रतिष्ठा के, है ना। इसीलिए अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा से क्या निकलना है तो क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मीनियल सर्विस करना चाहिए कि मैं सेवक हूं। इसीलिए गुरुकुल में जो बच्चों का शेड्यूल होता है उसमें अधिकतर क्या होती है? क्लीनिंग सेवा होती है, ज्यादातर क्लीनिंग सेवा होती है। तो लोग सोचते हैं गुरुकुल भेजा तो लगाए हुए हैं, लकड़ी लेके आओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, गुरु के लिए पानी लेके आओ, पानी निकालो, एक सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? कुछ शास्त्र पढ़ाते ही नहीं है, काम में लगा दिया है। तो अच्छे मिल गए इनको, अच्छे बच्चे मिल गए। या कभी कभी जैसे हम लोगों से बोलते हैं, अच्छा आपके बेस में बच्चे हैं, अच्छे आपको काम करने वाले मिल गए, ऐसे बोलते। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है, हमें जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे तब तक हम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्लीनिंग है ना, सेवा, मीनियल सर्विस करना, तो उससे क्या होगा, हृदय हमारा शुद्ध होगा। और जब शुद्ध हृदय होगा तो हम ज्ञान लेंगे तो हमके हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। आजकल क्या होता है स्कूल और कॉलेज में, हृदय तो पूरा शुद्ध है, पूरे अहंकार ही है, तो और अगर ज्ञान ले लेते हैं तो और ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है। इसीलिए गुरुकुल में क्या होता था, पहले मीनियल सेवा, ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम में तो पहले मीनियल सेवा, आपको क्लीनिंग करना। जैसे अभी लास्ट सैटरडे अब दो तीन लोगों ने मिलके बर्तन क्लीन किए, तो अभी ऊपरी तौर से ला, अरे यार बर्तन क्या क्लीन करने लगा दिया, ठंड का समय और रात हो रही है, नींद आ रही है ना। लेकिन वो जब तक वो सेवा भावना विकसित नहीं होगी, जब विनम्रता का गुण नहीं आएगा तब तक क्या हो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस जाएंगे, है ना। इसीलिए ये एक्चुअली मीनियल कुछ नहीं है, भगवान की सब सेवाएं उच्च है, हमें मीनियल लग रहा है, ऐसी सेवा करना जिसमें हमारी प्रतिष्ठा ना। अभी आप कीर्तन करेंगे तो अरे यार कितना बढ़िया कीर्तन कर रहा है, प्रवचन देंगे तो वाह वाह ही होगी, जो पीछे झाड़ू लगा रहा होगा या पीछे बर्तन धो रहा है तो उसको कोई देखेगा नहीं, लेकिन भगवान देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, वैष्णव देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है ना। तो अच्छा है कि हम ऐसी सेवा में संलग्न हो, और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए तो हम किसी भी सेवा में लगेंगे, प्रवचन भी देंगे, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। और पहले से अगर हम ऐसी सेवा में चले गए जहां पर हम एकदम स्पॉटलाइट में सब हमको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। इसीलिए वो एक गुरुकुल ट्रेनिंग जो होती थी वो अच्छा था। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे करते थे, श्रील प्रभुपाद भी, कोई भी आया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो और जानते ही, कोई भी नामी प्रतिष्ठित कोई आया और सीखना चाहता है, ठीक है जाओ बर्तन धो, बर्तन धो के आओ, किसी को बोलेंगे बैगन तोड़ के आ जाओ, किसी को बोलेंगे आप एक गार्डन में पानी डाल के आ जाओ फिर सिखाएंगे। तो वो सब क्या है, इसके लिए जिससे वो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उसमें योग्यता आ जाए। अगर ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता नहीं आएगी तो फिर अहंकार आ जाएगा, है ना। इसीलिए वो बहुत जरूरी है ये मीनल से। जैसे आप महा क्लीनिंग है आज, तो हम क्लीनिंग करेंगे तो यस हमें वो भावना विकसित होगी, यस वो सतोगुण तो विकसित हो गई, साथ साथ में ये भावना आएगी कि मैं सेवा के लिए हूँ, मुझे भगवान की तुच्छ सेवा करना है। कोई झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, उसको नहीं बोलेंगे बहुत अच्छी झाड़ू लगाई तुमने, प्रवचन देगा तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा प्रवचन दिया, है ना। इसीलिए अच्छा है कि वो हम सेवा लें। तो ये फिर तो हमें अहंकारी भक्त नहीं बनना है, प्रतिष्ठित भक्त भी नहीं बनना है, और संतुष्ट भक्त भी नहीं बनना है। तो कपिल मुनि बता रहे हैं, जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है ना। तो जो वर्णाश्रम में चार वर्ण है और चार आश्रम है, चार वर्ण के लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और भगवान को अपना फल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी फोकस क्या है कि जो कर्म किए उसका फल भगवान को अर्पण करना है, जिससे मैं इस भौतिक जगत में एक सुख शांति का जीवन जी सकूं। मेन फोकस ये नहीं है भगवान की सेवा करना है, मेन फोकस क्या है, एक पुण्यशाली सुख शांति का जीवन में जी सकूं। तो ये क्या हो गया, सतोगुणी भक्ति हो गई। और इसका हम दूसरा परिप्रेक्ष्य देखें, हम अपनी भक्ति से संतुष्ट हो गए, मैं तो सेटिस्फाई हूं, देखो मैं माला कर लेता हूं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, सुबह आता हूँ, बस तो संतुष्ट। अगर आप भक्ति अपनी भक्ति से संतुष्ट हो गए, मतलब आप क्या हो गए, आप डेंजरस पोजीशन में आ चुके हैं। जो अच्छा बिजनेसमैन है अपने कभी बिजनेस में संतुष्ट होता है, कभी होता है? अभी मुकेश अंबानी के पास करोड़ों पैसे हैं, करोड़ों अरबों, अगर एक दिन में कुछ लाख या एक करोड़ भी खर्च करे रोज, तो भी जब उसकी मृत्यु होगी तब भी उसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वो माइंड दिमाग में चल रहा है ये फैलाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, यहाँ कंपनी खोलना है, करेक्ट। तो भक्ति हमें समझा और जितनी हम भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति में संतुष्ट हो गए। तो भक्ति में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना, हमेशा असंतुष्ट रहना। भौतिक जगत में सेटिस्फाई रहना, भौतिक जगत में संतुष्ट रहना, लेकिन भक्ति में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना। और प्रयास, और प्रयास, और करना है, और क्या कमियां हैं, और कैसे चैंटिंग इंप्रूव करना है, क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, क्वांटिटी कैसे बढ़ाना है, रीडिंग है या सेवा है, कुछ भी है, जो भी आपको समय मिल रहा है, जो भी खाली समय मिल रहा है अपने कॉलेज स्टडी के अलावा, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे अपना प्रयास करना है ना। जैसे हमने कॉम्प्लेसेंट या संतुष्ट हो गए, बस इतना, बस बहुत हो गया, इस जन्म में तो इतना ही हो पाएगा मुझसे, जाना नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपनी भक्ति में ऐसे संतुष्ट नहीं होना, हमेशा अपने आप को पुश करते रहना, नहीं मुझे और करना, और करना है, ये करना है। ऐसे प्रभुपाद, प्रभुपाद वृंदावन में थे, करेक्ट। प्रभुपाद सुबह कितने बजे उठते थे वृंदावन में? 2 बजे, और करीब 2:30-3 बजे जाते थे यमुना नदी में स्नान करने, ठंड में, इस ठंड में, इस ठंड में अब यमुना नदी में पानी हाथ डालेंगे तो आप करंट लग जाएंगे, इतना ठंड, इतना ठंडा पानी होता है उस पानी में। वो 3 बजे स्नान करने जाते थे, अभी हमें स्नान कितने बजे करना होता है? 5, 5:30 अच्छे। और अब देखे, जो जैसे ऊपरी तौर से देखा है तो जो वृद्ध व्यक्ति है उनको ये सलाह दी जाती है कि ज्यादा ठंड में नहीं जाए क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, है ना। तो आसपास जैसे गर्म है, हीटर है, कुछ सर्दियों में इस तरह चालू रखते हैं। लेकिन प्रभुपाद सुबह जा रहे हैं यमुना नदी, फिर राधा दामोदर मंदिर जा रहे हैं, फिर अलग अलग मंदिरों में मंगला आरती अटेंड करने, फिर मतलब बुक्स लिख रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद तो अगर वृंदावन में ही है और शुद्ध भक्त हैं और अप्रकट होते हैं तो ही भगवान के धाम जाने वाले हैं, है ना। लेकिन क्यों, क्यों वो अमेरिका गए? अमेरिका क्यों गए? क्योंकि उनका गुरु का आज्ञा है, है ना, कंपैशन, करुणा, दया, जीवों पर दया, जीवे दया, है ना। तो अगर केवल अपनी भक्ति से संतुष्ट हैं तो भी वो केवल सतोगुण में भक्ति हो गई, वो शुद्ध अवस्था की भक्ति नहीं पहुंची, है ना। वो आहेतु की अप्रतिहता भक्ति नहीं पहुंचा। फिर कपिल मुनि बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है। मत गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहायसे मनोगतिर विछन्ना यथा गंगाम सोम बुधौ, है ना। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम आहैतुके अव्यभिहता या भक्ति पुरुषोत्तमे। क्या बता रहे हैं कपिल मुनि? जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वतः समुद्र की ओर बहता है, उसी तरह मेरा ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रभावित होता है, है ना। तो उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब जिस भक्ति में ना तो जो भक्त अहंकारी है, ना पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, ना वो अपनी भक्ति से संतुष्ट है। ये तीनों चीजों से हमको निकलना है। और कैसा आकर्षण है? जैसे गंगा नदी समुद्र की तरफ तीव्र प्रवाह होता है, है ना। गंगा नदी कहां से निकलती है इस भौतिक जगत में, मतलब पृथ्वी पर? हाँ, गंगोत्री। गंगोत्री से नीचे आती है, है ना, फिर प्रयागराज, फिर बिहार से होते हुए और कलकत्ता, फिर गंगा सागर में। तो जो गंगा का प्रवाह है, बीच में पहाड़ है, ऊपर नीचे जमीन है, अलग अलग तट हैं, अलग अलग लोग, कहीं डैम बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन गंगा क्या है? बस मुझे बस समुद्र से जाके मिलना है, है ना। तो ऐसे साधक के जीवन में जो भक्ति प्रारंभ हुई है तो बहुत सारे उथल पुथल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, है ना, बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है? बस जैसे गंगा नदी समुद्र में जाके ही रुकेगी, ऐसे ही हमारा लक्ष्य क्या है कि जो भगवान के भक्त हैं और भगवान के उनके चरणों में ही जाके हम रुके हैं बस। जैसे गंगा तीव्र, जैसे कुंती महारानी भी अपने प्रार्थना में बोलती है कि मेरा भगवान आपसे आकर्षण कैसा हो, जैसे गंगा नदी तीव्र प्रवाह से समुद्र की ओर जाती है, ऐसे ही मेरा जो मन है आप आपके चरण कमलों में मेरा आकर्षण हो, है ना। तो ये शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति जो करता है, अगर बाकी लोगों में ये तीन गुण दिखाई दे रहे हैं, कोई अभिमानी है जिसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, या अपनी भक्ति संतुष्ट है, तो ना तो उससे वो द्वेष करता है, ना उससे वो अटैच होता है, है ना। जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, शुद्ध स्तर भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं कि देखो मैं तो शुद्ध भक्ति कर रहा हूं बाकी तो गुणों में कर रहे हैं, है ना, इस तरह से नहीं। तो हमें एक दूसरे की मदद करना है ना। जैसे एक बार गौड़ी मठ में सबको पता था कि ये जो भक्त हैं ये सब उल्टा पुल्टा गड़बड़ कर रहे हैं, सबको पता था। और भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर को भी पता था कि ये भक्त सही नहीं कर रहे, तो उनके पास कंप्लेन लेके आए कि ये तो मठ में इस तरह से कर रहे हैं। और एक तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोले, बोले कि अगर मैं इसको हॉस्पिटल से निकाल दूंगा तो इसका इलाज कहाँ होगा। तो अभी हॉस्पिटल में तो इलाज तो होता रहेगा ना इसका, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इसको निकाल दो, ये ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन यहाँ से निकल गया तो इसका जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी ट्रीटमेंट का वो भी चला जाएगा, है ना। तो हमें समझना है कि जो एक आईसीयू में पेशेंट है, है ना, एक स्पेशल वार्ड में है और एक जनरल वार्ड में है। जो तमोगुणी भक्ति कर रहा है वो आईसीयू में है, रजोगुणी वाला स्पेशल वार्ड में है, और सतोगुणी वाला जनरल वार्ड में है। और जो स्वस्थ व्यक्ति वो क्या है, वो निर्गुण भक्ति है। अभी निर्गुण भक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति वो बोले अरे आईसीयू में पड़ा हुआ है, देखो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा रहा है, डॉक्टर का काम बढ़ा रहा है, निकालो इसको, मरने दो इसको, है ना, तो क्या होगा, वो हॉस्पिटल का पर्पज नहीं है, वो डॉक्टर का पर्पज नहीं है, है ना। डॉक्टर का पर्पज क्या है, उसको ट्रीट करना। तो अगर कोई ऐसे भक्ति कर भी रहा है तो हमें प्रयास करना है कि मैं उसकी कैसे मदद कर सकूं, ना कि उसका उपहास करना, उसका मजाक उड़ाना या पीठ पीछे बात करना, वो नहीं है, उसकी कैसे मदद कर सकूं, है ना। एक बार कुछ एक बाहर का व्यक्ति था, प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद आपके भक्त बहुत लड़ते रहते हैं, है? आपके भक्त लड़ते ही रहते हैं आपस में। तो प्रभुपाद बोले मैं आश्चर्य कि वो जप कर रहे हैं, मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है कि वो जप कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति को केवल यही दिखाई दे रहा था कि लड़ रहे हैं, उस व्यक्ति को ये दिखाई नहीं दिया कि वो अपना देश छोड़ के यहाँ इंडिया में आए हैं, टेम्पल निर्माण में ले रहे हैं, इतनी ऑस्ट्रिटी ले रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत लड़ भी रहे हैं तो ठीक है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। उसको क्या दिखाई दे रहा है कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, करेक्ट। तो किसी को रिजेक्ट करना बहुत आसान है ना, किसी को रिजेक्ट करना बहुत आसान, लेकिन साथ में लेके चलना वो बहुत मुश्किल काम है ना। तो हमारा क्या होना, एकोमोडेटिव होना चाहिए हमको साथ में लेके चलने, जब तक एकदम ग्रॉस रूप से वो एकदम पागल नहीं हो जाए, वो चार नियम तोड़ना चालू कर दे, माली बंद हो गया तो अच्छा है कि वो चला जाए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी वो खराब करेगा। जहां तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तो हमें प्रयास करना है सब साथ में चले, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। और प्रभुपाद बताते हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, सितार में कुछ हुक है, एक वायर है, लकड़ी का पुर्जा है, तो अगर तार अलग है, स्क्रू अलग है, लकड़ी का पुर्जा अलग है, तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो अलग अलग पार्ट है उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, है ना। अकेले तार से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अकेले स्क्रू से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब तार स्क्रू वो लकड़ी का पुर्जा जब साथ में आते हैं तो उससे आवाज निकलना चालू होती है, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अलग अलग लोगों में जो काबिलियत है, है ना, जो एक्सपर्टनेस है, उसको देखा और उसको फैन किया, है ना। ऐसे गुरु महाराज बता रहे थे कि एक भक्त थे, वो मंगला आरती में आते ही नहीं थे, वो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते थे, लेकिन फंड कलेक्शन में बहुत अच्छे थे, बहुत कलेक्शन करके लाते थे। तो कई लोग प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी तो क्या है मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते और ये सब, तो प्रभुपाद यस प्रभुपाद ने बोला कि हाँ नहीं आते, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, अभी हमको एक्सक्यूज नहीं लेना है उस चीज का, है ना। प्रभुपाद एक अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि वो इतना सेवा कर रहे हैं और सेवा करने से उनका शुद्धिकरण होगा और फिर वो धीरे धीरे वो जो सुबह उठना, वो तपस्या लेना, वो कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, उनको कुछ समय एटलीस्ट वो सेवा कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रीचिंग क्या है, जो व्यक्ति में सबसे बेस्ट चीज है उसको निकालना और उसको भगवान की सेवा में लगाना, वो प्रीचिंग है ना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कोई गुण है कुछ, है ना, तो उसको ढूंढना और उसको ढूंढ कर उसको भगवान की सेवा में लगाना, है ना। नहीं तो क्या है, हम अवगुण देखते रहेंगे, अरे इसमें तो ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है, हम ही परेशान होते रहेंगे, है ना। जैसे मक्खी और मधुमक्खी का उदाहरण है ना, मक्खी कहाँ बैठती है, गंदी जगह पर। पूरा एक फूल का अच्छा गार्डन होगा, फूल लगे होंगे गुलाब के, है ना, अच्छे खुशबू आ रही होगी, वो मक्खी कहाँ बैठेगी, जो पूरे गार्डन में क्या होगी, जहाँ गंदगी होगी वहीं जाके बैठेगी, उसको फूल दिखेगा ही नहीं। लेकिन मधुमक्खी क्या होती है, पूरा कीचड़ है तालाब में, पूरा कीचड़ है, गंदा है, लेकिन वहाँ कमल है तो मधुमक्खी वहाँ जाके बैठेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो सामने वाले के जो दुर्गुण है उसमें बस ढक देना है, वो तो दिखाई देंगे। गांधी जी के बंदर नहीं बन जाना है, बुरा मत बोलो, एक ये भी एक्सट्रीम है, किसी की निंदा मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। निंदा मतलब क्या कराती है, निंदा की क्या परिभाषा है, कौन बताएंगे, निंदा मतलब क्या, कोई किसी की निंदा कर रहा है तो उसको कैसे बताएंगे निंदा कर रहा है,
सामने वाले की गलतियों को बता रहा
है। तो गलती तो दिखेगी, अब आपने प्रसाद दिया और प्रसाद लेने के बाद पोछा नहीं लगाया तो दिखेगा, वो तो आग उठे, उठने के बाद फोम फोल्ड नहीं किया, पोछा नहीं लगाया तो दिखेगा वो तो। तो किसी की गलती निकालना अहित की भावना से, उसको बोलते हैं निंदा। अगर हित की भावना से हम गलती देख रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो निंदा नहीं है, करेक्ट। और अहित की भावना क्या हो सकती है, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं मजे के लिए, अरे बहुत बनता है वो, बहुत चैंटिंग करता है, देखो वो क्या कैसे कर रहा है, ये भी नहीं करता, तो ये क्या हो गया, निंदा हो गई। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं यार वो ऐसा करता है, क्या किया जाए, बात करते हैं, उसके फ्रेंड से बात करते हैं, प्रभु जी से बात करते हैं, उसमें सुधार आ जाए, तो वो निंदा नहीं है। कई लोग इस एक्सट्रीम पे चले जाए, किसी की निंदा मत करो बस, ये भी सही नहीं है ना। फिर कई लगता है, जैसे मंदिर में अभी हुआ है, अभी 6 साल हो गया मंदिर को, तो क्या हुआ, आपस में कुछ भक्तों का आपस, मतलब मंदिर के भक्त नहीं, बाहर से जो माताएं आती हैं उनका आपस में झगड़ा है या कुछ है। कुछ लोगों ने डिसाइड किया मंदिर में तो क्या पॉलिटिक्स चलती रहती है, झगड़े होता रहता है, हम अपने काम से काम रखेंगे, अपनी भक्ति से मतलब रखेंगे, मंदिर आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, प्रसाद लेंगे और चले जाएंगे, बस हमें किसी से लेना देना नहीं है, है ना। ऐसे बेस में तो बहुत परेशानी है यार, ये है, और हमें तो अपने से मतलब है बस, और किसी से मतलब नहीं, बस बात खत्म। तो ये भी क्या है, वही भिन्न दृक। मंदिर में परेशानी है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ झगड़ा चल रहा है, तो इसकी वजह से हम भगवान की सेवा थोड़ी छोड़ेंगे, हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, कोई करे ना करे उसमें क्या है। ऐसा हुआ है खासकर कुकिंग सेवा जो है, माताओं का जो कुकिंग सेवा, उसमें कभी किसी का झगड़ा, कभी किसी का झगड़ा, कभी किसी का झगड़ा, तो कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम तो सेवा करेंगे नहीं, हम अपने बस। तो बस सेवा करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अपना 2-3 लोग मिलकर सेवा करते रहो। ये प्रिंसिपल कहीं भी लागू होता है, जब हमें ऐसे भक्तों में तमोगुण या रजोगुण के लक्षण दिख रहे हैं तो हमें अपने आप को वहां से अलूफ नहीं करना, अलग नहीं करना, हमें अपनी सेवा कंटिन्यू करते रहना। और फिर उसमें सुधार आए नहीं आए, ठीक है, अगर हम ऐसी स्थिति में हैं उसमें सुधार ला सकते हैं तो ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में नहीं है तो अपनी सेवा करते रहना। ऐसे जनरली होता है, कई बोले कि प्रभु जी ये तो मंदिर में इतने समय से हैं और मैं देखता हूँ ये भक्तों पर चिल्लाते ही रहते हैं, कैसे भक्त हैं ये तो है? बोले आप अपनी भक्ति कीजिए ना, उनको देखने वाले दूसरे लोग हैं। और कई लोग ऐसे आने बंद कर देते हैं, मंदिर ही आना बंद कर देते हैं, भगवान की सेवा बंद कर देते हैं। तो ये दुर्गुणों को देखकर हमें ऐसा नहीं कि अपनी सेवा बंद कर देनी, अपनी भक्ति बंद कर देना है ना। तो यस, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये भक्ति, हम तीन गुणों से किस तरह से प्रभावित हैं, तीन गुणों से कैसे निकलना है, और किसी के अंदर तीन गुण हैं तो हमें किस दृष्टिकोण से उसके साथ व्यवहार करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।
तो प्रभुपाद जी से बोल थे और गलत थी, तो फिर मतलब ऐसे उनकी सामने वाले की जब उसमें गलती थी तो फिर उन्होंने कुछ एक्शन लिया कुछ ऐसा कुछ?
किस चीज में?
प्रभु जब उन्होंने वो रोक दिया था ना टेंपल का,
हाँ,
कंस्ट्रक्शन करना,
हुँ।
तो फिर उन्होंने मतलब ऐसे बोला रोहित से कि आप जाइए उनके
पैर छुके
जाइए।
हाँ, तो प्रश्न ये है कि वो जो शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्य उनको बोला कि जाओ पैर छू क्या, और तो उनको क्यों नहीं समझाया? क्योंकि क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझना चाहते ही नहीं, मोटी बुद्धि वाले होते हैं, है ना, जड़ बुद्धि वाले होते हैं, खासकर जो भक्ति में नहीं है वो क्या मोटी बुद्धि है, उनको समझ में नहीं आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, इसको बोलते ट्रिक टेक्टिक्स, के सामने वाले का जो अहंकार है उसको थोड़ा संतुष्ट कर दिया जिससे वो भक्ति में लग गया। अभी वो मंदिर बना रहे थे, एक तरह से सेवा कर रहे थे, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं थे कि अपना अहंकार छोड़ सके, है ना। कभी कभी जैसे प्रबोधानंद सरस्वती भी बोलते हैं कि प्रचार करने जाते हैं, श्लोक याद नहीं है, बताते हैं कि क्या आप बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जो भी आपने बकवास सीखा उसको छोड़ दीजिए और चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मंदिर में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, जैसे जब नरेंद्र मोदी CM था गुजरात में, तो जब जन्माष्टमी होता था अहमदाबाद में तो वो आता था, तो नरेंद्र मोदी जैसे आता तो सारे डिवोटीज आए हैं, चले आइए आइए अभिषेक कीजिए। तो कई लोगों को डाउट आया कि ये नरेंद्र मोदी को तो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम इतना सेवा करते हैं, हमें तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, हमको डांटते रहते हैं, है ना। तो एक्चुअली भक्तों को तो हृदय से रिस्पेक्ट है, वो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोई पॉलिटिशियन है ना, कोई बिजनेसमैन है या ऐसे लेबर है, तो इतना ईगो होता है, इतना अहंकार होता है कि वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में आ ही नहीं सकते। तो कभी कभी क्या होता है, भक्त लोग ट्रिक करके इस तरह से मधुर वचन बोल के वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको भक्ति में लगा देते हैं, और भक्ति में लगते हैं, मंदिर आते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं कि मुझे अहंकार छोड़ना है, तो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो ये क्या होता है, टेक्टिक्स होती है थोड़ी। ज्यादातर ईगो क्लैश होता है, काफी बार नहीं होता, ज्यादातर ईगो क्लैश होता। ईगो क्यों हो रहा है, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, है ना। भक्ति का जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं वैसे सब फॉलो करें, या जैसे मैं भक्ति कर रहा हूं वो सबसे श्रेष्ठ है, और इस पैमाने में कोई फिट नहीं बैठ रहा है तो गलत है, या जो मेरे अनुसार फिट नहीं बैठ रहा है वो गलत है ना? तो भक्ति में तो वैरायटीज हो सकती हैं बहुत सारी, सबका थोड़ा अलग अलग तरीका हो सकता है सेवा करने का। तो जब भी ईगो आ रहा है तो हमको समझना है कि ये हम रजोगुण से प्रभावित है ना? और अगर हम उसमें विनम्रता की स्थिति ले लेंगे तो वो एक्चुअली वो ज्यादा महानता है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज एक मंदिर में जाते थे और वहाँ के जो पुजारी थे वो बहुत हार्श बिहेव करते थे, बहुत ही नेग्लेक्ट करना, बात नहीं करना। तो महाराज बताया कि ये इतने समय से भगवान की सेवा कर रहे हैं, अब भगवान इनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो अच्छे भक्त हैं और मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की सेवा तो कर रहे हैं। तो भगवान जो महाराज ने कोई रिएक्शन नहीं किया, ठीक है जैसे वो व्यवहार करना चाहे करें। तो जब वो पुजारी हैं उन्होंने देखा कि मेरा इतना करने के बावजूद भी इनके व्यवहार में कोई उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वो पूरा चेंज हो गए पुजारी महाराज के प्रति, है ना। फिर महाराज जब भी आते थे उनसे मिलना, फ्रेंडली रिलेशनशिप इस तरह से। तो कभी कभी होता है कि कोई किसी ने कुछ बोला तो उस समय थोड़ा सा, इसीलिए तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहसुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। बहुत छोटा श्लोक है और बहुत मुश्किल श्लोक है पालन करने के लिए, है ना। तृणादपि सुनिचेन, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना, तिनके से भी ज्यादा सुनिच, नीच मतलब सुनिच होना, तो बहुत मुश्किल। तो ये हमको विकसित करना है गुण अपने अंदर। वो तो हाँ वो तो ऐसा है, तो जो मॉडर्न एजुकेशन से पढ़ के आए हैं तो उनमें तो ये ऐसे भावना होती है, जैसे टीचर है, टीचर को कैसे चीट करना है, होता है कि नहीं होता, है ना, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, कैसे मतलब निकलवाना है। तो जैसे भक्ति में आते हैं तो ये भावना तुरंत तो जाती नहीं है, इसीलिए वही मीनियल सर्विसेज और चेस्टाइजमेंट के लिए तैयार रहना, डांटने के लिए तैयार रहना, तो वही प्रोसेस तो वही है, हमको बार बार सुनना है, उसको पढ़ना है और सेवा करना है। ऐसी सेवा करना है जिसमें हमारा नेम फेम नहीं हो, हम स्पॉटलाइट में नहीं है, ऐसी सेवा करते रहना। क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, पूरा एकदम हमारी हमारी जो फाइल होती है करप्ट कर देता है, सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गए। तो अभी क्या भक्तों के बीच में वही ऐसी डीलिंग होती, तो थोड़ा उसमें, इसीलिए आप लोग भी जिस उम्र में भक्ति में आए वो भी लेट है एक्चुअली, लेकिन चलो आ गए वो अच्छा है। इसीलिए बचपन से जो इस सिस्टम में जाता है वैदिक सिस्टम में, तो अपने आप वो भावना नहीं आएगी, है ना।
प्रचार में कभी-कभी सामने वाला अपनी बातें बताता है, तो उनसे कहते हैं ये सब छोड़ दो और भगवत की ताते में, तो कभी-कभी ऐसा बोल रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है, मुझे आगे इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं।
भगवत गीता में कोई स्कोप नहीं है,
मुझे जैसे
इकोनॉमिक्स को पढ़ूँ, ठीक। तो प्रश्न ये है कि कोई हम प्रचार करने जाते हैं और कोई अपनी बात अपनी कहानी चालू कर देता है, है ना। अगर उसको बोलते हैं भगवद गीता पढ़िए, तो बोलता है अगर मुझे इस विषय में इंटरेस्ट नहीं है, स्कोप नहीं दिख रहा है, तो क्यों पढ़ूँ, है ना। तो अभी आप इग्नोरेंट है ना, बच्चे को स्कोप नहीं दिख रहा है कि स्कूल जाने से क्या होगा, बच्चे को स्कोप दिख रहा है, बच्चे को स्कोप तो खेलने में लग रहा है, क्रिकेट खेलने में अच्छा लग रहा है उसको। तो बच्चे को होता है ना श्रेयस और प्रेयस, है ना, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब हमारे लॉन्ग टर्म में अच्छा है, और प्रेयस मतलब तुरंत अच्छा है। तो जो बोल रहा है कि इस विषय में तुम्हें स्कोप नहीं दिख रहा है, मतलब वो क्या दिख रहा है, उसका स्कोप का दायरा क्या है, वो बहुत ही छोटे दृष्टिकोण से वो देख रहा है अपने जीवन को। कई लोग ऐसे होते हैं जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, कई लोग पायस होते हैं। अगर हमको थोड़ा समझाएंगे कि जो जो आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं, जो भी चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, अंततः आपसे छूट जाएंगे, आपके साथ आगे क्या जाने वाला है, तो भगवान की जो आपने सेवा किया, जो स्पिरिचुअल नॉलेज लिया वही जाएगा। तो थोड़ा सा वो हल्का सा पायस व्यक्ति होगा, सुनने वाला होगा तो ले लेगा, और असुर हो गए तो वो तो लेंगे नहीं, ऐसा होगा। तो छोड़ देना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है इस तरह से, तो प्रसाद दे सकते हैं, मतलब ट्रेन में तो नहीं दे पाएंगे, ऐसे मंदिर आए हैं, जैसे जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था भगवान राम ने मांस खाया, तो ऐसे मंदिर में कोई आया था तो उसने पूछा था मुझसे कि भगवान राम ने मांस खाया तो क्या हुआ, तो उसको समझा, तो समझा दिया, फिर वो दूसरा क्वेश्चन करने लगा। तो उसने लेकिन बोला कि आप वाल्मीकि रामायण लीजिए, उसको पढ़िए, आप सुनी सुनाई बात पर या किसी की देखी हुई बात पर क्यों निर्णय ले रहे हैं। बोले ये तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मतलब आप सिंसियर नहीं है, केवल आप एक मजे के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग उन पे ज्यादा एनर्जी नहीं डाल देता, टाइम वेस्ट हो जाता है।
कभी एक व्यक्ति पूछ
भगवान क्यों है, मतलब
भगवान क्यों है?
भगवान सृष्टि करता है, भगवान एंजॉयर है,
पर क्यों है?
भगवान ने सृष्टि की, क्यों है मतलब?
मतलब भगवान का एग्जिस्टेंस ही क्यों
है? भगवान का हमारा एग्जिस्टेंस है, और हमारा एग्जिस्टेंस किसने बनाया? भगवान ने बनाया। मतलब ये एक्सियोमेटिक ट्रूथ है, एक्सियोमेटिक ट्रूथ मतलब इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। भगवान जन्मादि यस्य था, भगवान है, भगवान ने सृष्टि बनाया, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान की इच्छा है।
उसको बताया भगवान भगवान है इसलिए वो है। भगवान का भी अंत नहीं होता, भगवान भगवान इसलिए वो है।
मतलब भगवान एक व्यक्ति है, भगवान परम भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर है, और वो अपने धाम में है, उनकी इच्छा है, वो है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।